विभिन्न आचार्यों ने इसका भाष्य किया। स्थिति कायम हुई थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने संक्षेप में सात नंबर का चाची को जो अर्थ है इसको बतलाया। वही अर्थ जीत मिले से सनातन गोस्वामी जी, फिर सनातन गोस्वामी से जीव गोस्वामी, और फिर उनसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और उन्होंने बतलाया पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी का इसका अर्थ, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, फिर जीव गोस्वामी का, फिर चैतन्य महाप्रभु जी का इसका संक्षेप में बताएंगे। जो हमारे संप्रदाय का ही बिजली कार्य जब आज यही प्रश्न पंचा पंचपति
तवैवास्मी तवैवास्मी न जिगामि प्रयागिना इति विज्ञाया देवं नमामि। आपने हमारे हृदय के अंदर में कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, राज तत्व, विलास तत्व, ये सब चीजों का स्तुति कराई हमारे अंदर। और फिर जैसे सुख पक्षी को कोई पढ़ा करके तैयार करके फिर उसे सुनता, वैसे ही आपने किया। ऐसे समुद्र अपना पानी लेखों में संकलित करने के उसी से ग्रहण करने शिव अपने शिव और होने में रत्न ग्रहण करके रत्न या रत्न सब और कुछ नहीं, समुद्र का पानी ही समुद्र में गिर करके और रत्न बना। देखने में वो रत्न नहीं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं रत्न आते हैं। इन्हीं से ये विचार होने गया कि कैसे गया वो बारीकी से जो किस विषय के वैज्ञानिक है वो समझे, साधारण आदमी नहीं समझे। अंतर ज्ञानी से भगवान ईश्वर की यही रीति है कि अंतर ज्ञानी से किसी के हृदय में वो मात्र प्रेरणा करता, कुछ चीज है अपने साधन और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृपा सिद्ध है, ऊपर से अवतरित होती है। हम चेष्टा कर सकते हैं किंतु वो भाव आएगा कि नहीं आएगा वो भाव के अधीन है, वो भगवान ही भाव है या राधा जी वो भाव। तो वो जब करुणा करके देखेंगी कि हमारे यहाँ पर प्रकाशित रहने का क्षेत्र इसमें हो गया तो संभव नहीं चले। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा कि हमने उनकी नाभि कमल से हमें पैदा होकर के अनंत काल तक ऊपर नीचे घूम करके इसका आदि खोजने की चेष्टा की किंतु नहीं मानी। इसलिए हम लोगों की चेष्टा का अधिक मूल्य नहीं है। यदि हम दीन दीन अकिंचन बन करके अनकंडीशनल सरेंडर करके रोए गाए खिमियाए तो वो चीज हमारे अंदर में
ब्रह्मा जी निराश हो गए, भगवान के शरणागत हो गए, तो उन्होंने उनका धर्म अंतर जाने की, पहले उनको ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, भगवान ने देखा जिसको ज्ञान व अनुभूति तो मिल गई, तो भगवान ने क्या किया, लो मैं तुम्हें देता हूँ, ये कहता कि अपना गांव ज्ञान उनके अंदर में विज्ञान वस्तु हमारे जैसा नाम अपनी चेष्टा से वो लाख कोटि जन्म में नहीं, उन्होंने ये भी बतलाया 50,000 वर्ष तक दिव्य वर्षों से, अपने वर्ष से, हमारे वर्ष आपके वर्ष से नहीं, अपने वर्षों से तब वो आराधना की, कभी गोपियों की चरण भूलि नहीं था, उनको जगत का की सृष्टि इत्यादि करने का ये ज्ञान तो मिल गया, किंतु गोपियों की चरण रज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं, अपने आप में था, इसलिए ये ज्ञान सरल नहीं मिलता। और ऐसे ही हम लोगों को एक दिन में नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तब ये है नहीं या होगा ही नहीं, निराश हो जाने वाला कभी कभी निराश मत हो, इसलिए बताया है ना उत्साह निश्चय हरिया तब तक करना पड़ो, अनेक तो निराश हो जाएगा तो कुछ जो मिलने वाला था कभी तो निराश मत। हमारे उपनिषदों को देखने से ऐसे ही मालूम होता है, इंद्र और विरोचन गए ब्रह्मा जी के पास में, वो खबरा करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करके विरोचन आ गया, मैंने समझ लिया ये मान लिया, बस वही कर ये सरल ही सर्वस्व। और इंद्र विवेचना करते पुनः पुनः उनके पास में गए, तब अंत में उन्होंने उनको आत्मज्ञान, वो भी आत्मज्ञान मिला और कुछ अभी परमत्व का ज्ञान नहीं मिला, रस विचार उनको नहीं मिला। हम लोग जो चीज चाहते हैं ना ये कथन दुष्कर, हम लोग कुछ नीचे वाला कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी होगा हम तो देखते हैं राधा जी की दासी, अरे जो ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, नारद को नहीं मिला, उद्धव नहीं हो सके, और वो चुटकी बजाते ही मिल जाएगा, ऐसी धारणा होती है। जब ही 1,00,000 जन्म में भी मिले तो समझे ये बहुत जल्दी मिले, तो उसी का ये बता रहे कैसे उनको मिला, उसी के लिए मार दिया। ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य, ब्रह्मसूत्र गायत्री का भाष्य, और गायत्री ओंकार प्रणव का ये विस्तार है, उसमें भूभुवः स्वः जो तीनों व्यक्तियां हैं ये संसार है, संसारी का शक्ति जब तक भूभुवः स्वः में रहेगी तब तक वो बहुत दूर है, इसलिए इसके ऊपर बुद्धि उठेगी, अर्थात अवांग मन सब गोचर जब हो जाएगा और उसके शरणागत होंगे तो वो भगवदेव से स्वयं, तो भगवदेव कृष्ण ही है, अपनी शक्ति को पहले प्रकाश करेंगे, जो सूर्य को भी शक्ति प्रदान करने वाली है, तब फिर वो अपनी कृपा करके और कभी यहां पर प्रकटित हो, तो उसी में धियो यो धीयम माने बुद्धि व्यक्ति, मैं उनका ध्यान करता हूं किस लिए, किस प्रयोजन के लिए, हमारे हृदय में अन्य व्यक्ति इसलिए ध्यान करता हूं, उसी को श्री भागवत के इस श्लोक में बदला है, सत्यम परमा मैं उस परम सत्य वस्तु का मैं ध्यान करता हूं, इसलिए प्रयोजन क्या,
उदी हमारे हृदय में उदी को इसलिए उसी के लिए यहाँ पर पहला श्रीमद भागवत का पहला श्लोक दे रहे हैं। वेदांत सूत्र ने पूछा अर्थात ब्रह्म विद्या, शंकराचार्य इत्यादि ने बतलाया कि जगत जगत को नश्वर ज्ञान होने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा। हमारे गुरु गोस्वामी इत्यादि ने कहा कि फिर मीमांसा को पढ़ो, तब फिर उत्तर मीमांसा नहीं चले। जब जगत में कहीं भी सुख शांति न मिले तो कर्तत्व को जानने के लिए गुरु के पास में प्रश्न करो। तस्मात् गुरु प्रपद्ये तद् जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तो एक उत्तम से जानने के लिए उत्तम कल्याण हमारा कैसे होगा। जब तक वो वस्तु हमारे हृदय में आविर्भूत नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण, तो उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। व्यास जी कहो या सुखदेव गोस्वामी कहो, व्यास जी वंदना और मंगलाचरण में ही वस्तु का निर्देश, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है श्रीमद् भागवत इसी श्लोक में बदला। कैसे उनको जाना जाएगा इस विषय को भी बदला, और वस्तु है क्या, सब प्रकार से इसको शोध विचार करके पक्के करना। सत्यम परमत भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान यहाँ के कह रहे सप्तम परमा भी नहीं, तो कृष्ण की वंदना यहाँ पर की नहीं गई, तो ये कृष्ण ही श्रीमद भागवत के प्रतिपाद्य विषय है या उनका प्रेम ये कैसे समझा जाए। पंडित जी गोस्वामी का विचार उनको बतलाया ये सत्यम परम कर्तत्व जो है वो सत्य स्वरूप है, वो कौन है भागवत में ही बतलाया गया है। तो ये सत्य किसके लिए कहा गया, जो देवकी के जठर में है, गर्भ में है, गर्भ स्थिति के समय में देवता होता, इसलिए कृष्ण वही परम है। हम लोग संक्षेप में इसका कुछ अर्थ पहले हम लोग साधारण रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी की वो क्या है भगवत भागवत नारी की माला से इसका अर्थ बताएंगे तो समझें, नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों ने जीव गोस्वामी और सब लोगों ने लिखा है वो समझ में नहीं है, वो समझ में ना बड़ा कठिन। इसकी कितनी टीकाएं हैं इसका ठीक
नहीं,
108 टीकाएं तो मिलती है और कितने हैं इसकी टीका टिप्पणी भाष्य अनुभाष्य कितना है इसका 108। समस्त विद्वानों ने अपनी विद्या की सीमा यहीं पर लेकर के विचार, जैसे जन्मादर्श से जता वो ब्रह्मसूत्र का अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के बाद वाले में जितने बड़े बड़े विद्वान अब चार सूत्रों पर विशेष विचार और उसी में समस्त वेदांत सब उसी में लिया, वही की विद्या उनकी वही तक। वैसे इसी श्लोक में उन लोगों ने बड़े बड़े व्याख्या कारण इसकी टीका, हम उस टीका में से थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी उनकी क्या भगवता मरुचि माला में
না আপনি যে অস্ত্রটার জন্য এটা সহজ করবেন
তো ইয়ে বতলাতে হ্যাঁ সত্যম পরম 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 তত্ত্ব বস্তু অজ্ঞ জ্ঞান পর তত্ত্ব যুক্ত সাধারণ কারণ পরম সত্য সত্য শ্রীকালী সত্য वो परम तत्व मैं उनका ज्ञान करूं निरस्त कुंभ उसमें कोई वंचना इत्यादि नहीं है माया नहीं है किस प्रकार से वो तत्व है इस तत्व का को निरूपण करने के लिए एक उनका शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हैं और एक गौण रूप से अन्य और जैसे दो रूपों से वर्णन करें पहला जो ये जो उन्होंने कहा सत्यम पर अभी नहीं यही भगवान का शुद्ध स्वरूप है वो कैसे हैं सर्व काल में सत्य है सर्व कालिक सत्य है सर्वशक्तिमान है रस के समुद्र है वही परम तत्व है समस्त अवतारों के अवतारण है उन्हीं को कुछ लोग ब्रह्मा कुछ लोग परमात्मा कोई लोग स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में उनको कर सकते यही परम सत्य ये अपने धाम में नित्य का अवस्थित रह करके वहीं पर निरस्त हो अतः वहां पर माया नाम की कोई चीज नहीं है रीते अर्थम जगत प्रत्येक न प्रत्येक चार माया किसको कहते हैं जो स्वरूप तत्व से बाहर है स्वरूप तत्व में जिसकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है वो बस वास्तव में यथार्थ अर्थ अथवा तो कृष्ण ने अपने समस्त समय अपने ध्यान में अर्थ गोपी ब्रज मथुरा और द्वार सब समय वहीं पर नित्य वहां पर प्रकाशित वहां पर माया है यही उनका स्वरूप है और इतर स्वरूप को वर्णन करने के लिए हम लोगों के यहां यह रूप तो प्रकाशित नहीं है तो उस रूप को बहु रूप में प्रकाशित करने के लिए कारण है जन्मादर्श जगत वही सत्य स्वरूप जो परम तत्व वस्तु है वो जगत में आविर्भूत होकर के अपने अवतार से या कलाओं से या पद्म वैभवों से वो इस जगत में प्रकट हो वो सर्वशक्तिमान है अखिल रसामृत सिंधु है वो प्रभु उनकी पराशक्ति एक है वही शक्ति विरुद्ध स्वीय थे विविध रूप में सुनी जाए एक ही शक्ति के तीन प्रकार हैं वो है संबित संधिनी राजा सी तो वही शक्ति तीन रूपों में परिणत होती है परिणत माने क्या
प्रकाश
ब्रह्माधिकारी नहीं है वो अपर अपर ज्ञान में उनकी शक्ति भी तीन रूपों में परिणत कैसे कि जगत को अपने चित्त स्वरूप से प्रकाश करते और वहां की जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूप शक्ति की चित्त शक्ति वृत्ति से वो प्रकाशित होती उसका उसकी एक और शक्ति है जिसको तटस्था कहते हैं जो अणु है चित मात्र है अंग उसके द्वारा अनंत जितने जीव है सब वो ये सब चिन्मय है और तीसरी शक्ति है जिसको माया शक्ति कहते हैं इस शक्ति के द्वारा अनंत को के विश्व ब्रह्मांडों का जो बाहरी बाह्य रूप है वो सब उससे प्रकाशित होता है जो कुछ हम इन आंखों से
जो नहीं दे देखते अनंत ब्रह्मांड सब में कहां ब्रह्मांड और क्या है उनकी विभूतियां भगवान की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में कल्पना कर सकते हैं तो हम लोगों की कृपा इन शक्तियों से जीव भगवान की तथा शक्ति का ये प्रकाश है या उसी का परिणाम है तो चेतन किंतु भगवान की अघटन घटन पटेसी स्वरूप शक्ति के एक वृत्ति के द्वारा जग जगत में प्रवेश करके अपने को जड़ समझ ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव चेतन है उसको कभी भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। ब्रह्म सब समय ज्ञान स्वरूप वो ऐसा माया में नहीं फंसेगा किंतु ये छोटा होने के कारण अंश होने के नाते माया के द्वारा उसकी ज्ञान की वृत्ति ढक जा सकती है। इसलिए ढकने से वो भगवान को भी भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है और स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को ही मैं मानने लगता है। अब ये बतला रहे हैं कि जन्मादश्य अश्य जगतस्य ये जगत की जो सृष्टि स्थिति और प्रलय जिनके द्वारा से हुआ अथवा ये कैसे हुआ अन्य रूप से भगवान की शक्ति तीन रूप में हो करके और अन्य रूप में तीन जगतों को प्रकाश किया यहां तक अन्वय हुआ। अब व्यतिरेक क्या हुआ जीव चिन्मय होने पर भी अपने को भूल कर माया में फंस कर अपने शरीरों को मैं और मेरा समझ करके इसी में लपे और भगवान को भूल ये व्यतिरेक अन्यादि का कष्ट और कष्ट अर्थ जितने भी उपादान ये जगत के सृष्टि के हैं महातत्व से लेकर अहंकार बुद्धि मन और उन लोगों से होने वाली इंद्रियां और पंच तत्व और पंच तत्वों के मूल जो रूप हैं उसको क्या कहते हैं
तन्मात्राएं
ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श और उसके द्वारा ये स्थूल जगत ये सब विषयों में वही अभिज्ञ है ब्रह्मा तक भी नहीं प्रकृति भी नहीं है इसलिए उनको बताया अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा वो स्वयं प्रकाश तत्व उनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं तेरे ब्रह्म विराज आग कवि आग कवि जो है ब्रह्मा उनके हृदय में अपने तत्व को प्रकाशित किया जीवु जिसमें बड़े बड़े मुंजंत जत सूर्य सूर्य लोग अर्थात देवता लोग मुक्त पुरुष भी जिसमें मोहित हो जाते ऐसे वेद का प्रकाश किया शब्द ब्रह्म माने देव और तेजो बाय निदान जथा दिनमयो जब प्रतिशत वो अमृषा अब जो बतलाया तीन प्रकार की सृष्टि चित सर्ग जीव सर्ग और माया सर्ग ऐसे पाने में समझ में नहीं आया जब भगवान ने कैसे सृष्टि की और उसका उदाहरण क्या है इसको समझाने के लिए कहते हैं कि तेजो बाय निदान जत्र विनिमय अर्थात चित सर्ग का अर्थात चित सृष्टि का उदाहरण कथन चित तेज है वो तेज माने अग्नि प्रकाश जैसे हम लोग सब बचपन में स्कूल में पढ़ने जाए तो सड़क पड़ता था तो वो बच्चे हम लोग वो पत्थर लेकर के पत्थर पर जोर से मारते तो उसमें आग की चिंगारियां निकल जाती
अच्छा चिंगारी पहले थी या जब हमने मारा तब भी निकली, उसके अंदर में है। ऐसे ही आग है, तेज है सर्वत्र, किंतु घर्षण से कहीं कहीं पर वो आग पैदा, जैसे दम में पेड़ों के संघर्ष से आग पैदा हो जाए, वो दीपनी अखिल उसी में समा जाती है। ये चित सर्व जो है, चित सृष्टि है, साधन के द्वारा कभी कभी झलक में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी विज्ञानियों को कभी कभी झलक में दी है। सब समय में नारद जी जैसे व्यक्ति को जो कितने कठोर साधना की क्षण मात्र के लिए दिव्य की भांति उनके आराध्य देव दर्शन दिया, और फिर थोड़े दुखद आदमी अंतर नहीं हो, और बोले इस शरीर से उस चीज को तुम दर्शन करने योग्य नहीं हो, मैंने कृपा करके निकला। साधन करते करते जब यह शरीर दूर हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार दूर हो जाएगा, तब तुम्हारा चित्त सर्व उसमें से। इसलिए इस जगत में चित्त व्यवस्था भगवान का दर्शन का वृंदावन का ये सब चित्त सर्व है, ये कभी कभी जीव जगत में सब समय में। और वाणी जीव सर्व जो है, जीव के जितने हैं ये कैसे हैं, जैसे पानी है, पानी की दो अवस्थाएं, यूं तो बहुत सी अवस्थाएं हैं जिसमें दो अवस्था, पानी जब गर्म होता है पानी जब बर्फ बन जाता है, बर्फ होने पर कठोर बन जाता है और पानी रहने में, अभी हम लोग कठोर हो गए हैं, जीव भगवान का नित्य दास है, ये उसकी तरलता है, इसका शुद्ध स्वरूप है प्रेम से जब तरल हो जाएगा, अथवा भगवान का भजन करते करते उसमें भगवान का दर्शन नहीं पा रहा है, उस वीरन में जबकि तरल हो जाएगा तब फिर भगवान तक। इसलिए अभी यह बद्धावस्था है, अभी माया के द्वारा जड़ हो गया, जैसे अत्यंत ठंड से हिमालय में पानी जम करके बर्फ हो जाता है, बर्फ की सिल्लियां लगी रहती है, ऐसे ही हम लोग अभी जमे हुए हैं, हमारी बुद्धि जड़ हो गई, और जब तरण होगा साधु संतों के सानिध्य में जब तरण हो जाएगा तो तरण होकर फिर भगवान की सेवा मिल जाएगी, ये विश्वास है। एक परमर्श और एक तीनों जीवों के दो चीजें दिख रहा है, और मृदंग मट्टी उदाहरण दिया किसका, जब पूर्ण रूप में नहीं है सब, आंशिक कुछ पूरा पाई नहीं सकता कोई उदाहरण, ये मनुष्य बंदर है, ये मनुष्य गधा है, तो सब पूर्ण रूप में लक्षण नहीं आए, उसी तरह से सामान्य रूप में आंशिक लक्षण के द्वारा बता रहे हैं, जैसे मिट्टी है कच्ची, उसका घड़ा बना लो, लोटी बना लो, उसी का गणेश जी बना लो, उसी का शंकर बना लो, उसके तरह तरह की चीजें बना लो, प्याला कप खड़िया सब कुछ बना, उसी तरह से अलग अलग चीजें, वो मिट्टी ही सब समय है, मान लिया कि मिट्टी को पका दिया अब तो बनेगा नहीं, किंतु नहीं कुछ दिनों के बाद में जब पुरानी हो जाएगी वो और अलग अलग कहां बिखर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएगी, फिर मिट्टी होकर तो फिर उसे बनेगा, मूर्ता मूल मिट्टी है, फिर मिट्टी में वो प्रवेश किसी न किसी ने किया। उसी प्रकार से ये महत्वत्व और ये सब चीजों का ये विकार, ये जड़ विश्व ब्रह्मांड है, इसमें पेड़ है, पौधे हैं, बीज है, और सोना चांदी जितने धातु हैं सब इसी से सुंदर चंपे का पुष्प, बेरी चमेली का पुष्प भी इसी से इतनी से निकलता है, और दुर्गंध भरे ये सब चीजें, ये चट्टी चट्टी क्या चीज है, वही चीजें तो है जिसका रखना दुर्गंध होता है, बीज भी उसी से उसी से ही होता है, दूध क्या चीज है, घास ही तो है न, क्या चीज है
घास ही नहीं है,
और वो धरतूबे में जो बीज होता है वो क्या चीज है, मिट्टी का ही रस तो है, इसलिए विभिन्न चीजें हैं उसकी उपमा ये मिट्टी दी। कथन चीज थोड़ा सा विनिमय जत्र त्रिसर्ग अमृता, ये त्रिसर्ग जो जीव सर्ग,
जीव सर्ग
और अनुचित सर्ग माने जीव सर्ग और ये प्रकृति, ये जगत का ये सर्ग, ये कुछ स्थलों में कुछ असत्य होने पर भी, अमृषा होने पर, मृषा होने पर भी, किंतु है सत्य, सत्य है। कैसे? जब मनुष्य सत्य है तो उसकी छाया जो है वो झूठी होगी, उसी को सत्य नहीं है। इसलिए ये जगत व्यापार जो है ये भी मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है, किंतु वो जैसे सत्य चित सृष्टि का है ऐसा जीव भी नहीं है और ये भी नहीं। ये भी कुछ कुछ आंशिक रूप में, किंतु ये कुछ अंशों में ये सत्य है किंतु नश्वर और परिणाम से। तो जिसके कारण से ये सब सारी सत्ताएं सत्य जैसे दिखती है, इससे वो ब्रह्म है ना, प्रिन्नति प्रिन्नति वो स्वयं ब्रह्म है, नित्य नवीन रूप से वो बढ़ता है और दूसरों को भी वर्धित करता है और सत्यता में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है, जगत के बाहर भी और कभी तक। यदि हम लोग में भगवान की सत्ता नहीं होती तो हमारे जीव की और ये शरीर की सत्ता होती? यदि उनकी शक्ति नहीं हो तो चीज सर्ग भी नहीं होता। जड़ सर्ग की तो बात भी क्या है, जो कुछ है यदि भगवान की सत्ता उसमें है तब तो वो ठीक है, और नहीं तो जिन चीजों में भगवान की सत्ता नहीं है, जैसे पुष्प, आकाश पुष्प, इसमें भगवान की कोई सत्ता है इसलिए वैसा नहीं। इसी तरह से जो चीजें नहीं है उसे भगवान की सत्ता नहीं है इसलिए नहीं, और जहां जहां पर भगवान की सत्ता थोड़ी भी रहे तो वो वस्तु करते वहां पर त्रिसर्ग अमृषा, ये त्रिसर्ग जो है ये अमृषा, अमृषा ने
नमृषा
कहीं कहीं पर वो असत्य जैसे दिखते हैं किंतु है नहीं, तीनों ही तीनों को बतलाया। क्यों? जिनके कारण, जिनके तटस्थ लक्षण के कारण ऐसा होता है, वही अपने धाम में स्वयं अपने शक्तियों से परवेष्टित, शक्तियों से युक्त, वो अपने धाम में, धाम माने अपने तेज में, अपने स्थान में, धाम माने
आश्रय,
गोकुल मथुरा वृंदावन द्वारका इत्यादि नित्य वहां पर, और भी उनके जो धाम है वैकुंठ इत्यादि में, उन धाम में वो नित्य परिपूर्ण रूप में है। सुना निरस्त कुलपन, माया का जहां पर कोई भी व्यापार नहीं है, निरस्त कुलपन सत्यम परम, वो परम तत्व है उनका मैं ध्यान करता हूं, इसलिए ध्यान करता हूं। जैसे ब्रह्मा ने ध्यान किया तो अंत में उनके हृदय में सबको प्रकाशित कर दिया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में इस सत्व तत्व को हमारे हृदय में। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं साधारण रूप में, ये बताइए साधारण रूप में समझो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, पहले तो पहला अर्थ तो इसी रूप में, वो तीन प्रकार के अर्थ किए, एक अर्थ किया साधारण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, ये तो पहला अर्थ उम्मीदों के आधार पर उन्होंने किया। दूसरा अर्थ उन्होंने किया केवल कृष्ण पर, तीसरा अर्थ किया राधा और कृष्ण पर, और चौथा अर्थ किया भक्ति पर, प्रेमा भक्ति के
ऊपर,
भक्ति के ऊपर, भक्ति आदरस इत्यादि
से गोटी नहीं लगाने से चलेगा नहीं, कोई भी स्थिति, फिर इसके बाद में इसके बाद
गोटी कुमार
उन्होंने जहां भी इनकी वंदना ऐसी वो जरूर ऐसा है। इस गीतों में सबसे सार हुआ गोपियों से संबंधित, देवी कृष्ण तात्पर्य से संबंधित, गोपियों से संबंधित सबसे अधिक श्रेष्ठ संगीत
दीनपंथो जगत्पते गोपेश गोपिकाधेन्दवनेश्वरी आदेवी काकुमरकुदयाचा जातेकूदंडवशोकार मंदेकैंडीव जटं जागुदरुचि सांगिदतलपट्टम्बरस्य वृंदारण्यनिवासिनं मुदिलसत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दं मे चितोदये भक्त्या विनापराधलक्ष्यै चित्तासुखानादितरङ्गमध्ये कृपामये त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चन्द्राय राधिकायै तदाजले कृष्णाय कृष्णभक्ताय स्वैताय नो विरहपातरयाति भाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभिनेतु
सब कुछ
तो वैष्णव का आसन लेना सबसे सुखदायी और सबसे बड़ा दुखदायी है वैष्णव का आसन। यदि वैष्णव का आसन में किसी प्रकार से छूट गया तो ये संसार में घूमना पड़ेगा, और वैष्णव का आसन यदि हो गया तो सब ठीक। तो वैष्णव का आसन किसको कहते हैं? सम संस्कृत समस्त शब्द जितने हैं अर्थवाचक होते हैं, उस शब्द में ही सब कुछ छिपा संग माने समय रूपेण गमनम अनुगमनम। किसी वैष्णव के साथ में है संग कर रहे हैं तो इनके जितने उपदेश हैं जीवन चरित्र है उनके हृदय के भाव में सदाचार में सबको ही अनुगमन करना, कैसे चलते हैं, कैसे विचार करते हैं, क्या करते हैं, उनके अंदर में क्या भावना है, कैसे भजन करते हैं, कैसे गुरु सेवा करते हैं, कैसे उनका दैनंदिन जीवन है, वो सबको हम लोग यदि अनुगमन करेंगे तो भगवान संभव। विशेष करके ददाति पतिगृहणाति गृहमाख्याति इच्छति
भुंते भुजं भजे
भयोदयै चैव सर्वं प्रतिपूर्वक। यदि विषयों को पा यदि संग करेंगे तो संसार में आवागमन होगा, और यही संग यदि वैष्णव के साथ में अच्छे संतों के साथ में हो जाए तो संसार से उद्धार का ये कारण होगा। संस्कृति का कारण है संग, वैसे ही लोगों के साथ में वही सर्व संत महापुरुषों के साथ में हो गया तो ये संसार से उद्धार का कारण बन गया। संत का तात्पर्य हमारे शरीर में गुरु होते हैं, क्या होता है ना, वो भी तो संत करता है। जब हम पर्म पर सोते हैं तो कुछ कर्म भी हमारा संग कर सकते हैं, तो ये लोग संग में चूहे भी हम लोगों के घर में संग करते हैं, ये सब संग में यथा रूप में उनके मनों के भाव जैसे हैं उन सबको अनुगमन करने का नाम संग। विशेष करके यहाँ पर भक्तों का संग, मान ले कि कोई पुत्र भी है अगर भजन नहीं करता तो क्या करेंगे, उसको घर से बाहर कर देंगे ना, क्या करेंगे, भाई उसका सब वक्त आता है खाता है पीता है चलता है संसार का सब करता है, उसमें छेड़खानी मत करो, अपना भजन करो, अपना परमात्मिक संग उसे लो, बस आवश्यकता होगी तो उसे हम छोड़ देंगे। इसलिए संग का नहीं होता है, उनके भाव का आचरण का विचार का अनुगमन करने का नाम। जैसे हजार छात्रता कोई संग कर रहा है क्या करेगा, 3 लाख नाम करते हैं तो 3 लाख नाम को दिन रात उनको और कोई चीज की फुर्सत नहीं, ऐसे तुम भी करो भगवान के प्रति जैसे उनकी भावना है तुम भी किसका नाम। शिष्य गुरु का संग करता है माने क्या, अपने अनुकूल होगा तो ग्रहण कर लेगा और प्रतिकूल कुछ बोलेंगे तो हम खराब कर देगा तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, सब कुछ लेकर के उनके मन की भावना को कृष्ण का भजन की सूचना करते हैं, संसारिक व्यवहार उनका लोगों के साथ में करता है, ये सब कुछ परिभाषा बहुत सीधी इसमें साधारण ने दिया, संसार से अनासक्त होना ही मुक्ति, फिर बताया आकंक्षित दुख अतः जन्म वर्ण से रहित होना ही, फिर बताया अपने स्वरूप में अतः बाहरी रूपों को छोड़कर के स्थूल और स्वच्छ शरीरों को अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम, और स्वरूप से दो बताया
युक्ति स्वरूप में और भगवत भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही यथार्थ। फिर एक और बतलाया भगवान के प्रति प्रेम होना ही यथार्थ मुक्ति का स्वरूप। उस प्रेम में भी यदि जिसका स्वरूप है गोपी भाव का उसको प्राप्त होना ही सबसे सर्वाधिक मुक्ति की प्राप्त। रहता है गान में संगीत में जिनका अपना धर्म क्या है। राधा कृष्ण की प्रेमी प्रेम के लिए की या प्रेम विलास की बातों का मन जिस गीत का संगीत का उद्देश्य है वो यथार्थ संगीत गोपियों के मुख से निकले हुए कृष्ण के प्रति जो भाव है चाहे ब्रह्म गीता मैंने रोटी गीत में हो या बंसी वेणु गीत में हो वो सबसे संसार में विश्व में संगीत के ऊंचे मान के लिए इनसे बढ़कर क्या और कोई गीत नहीं। हमारे वैष्णव कवियों ने आत्मदर्शी कवियों ने रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीव गोस्वामी कविकरण को विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि वृंदावन ठाकुर इत्यादि जो सब कीर्तन करते हैं ना ये सब संगीत ये भी राधा कृष्ण की प्रेम के लिए के संबंध में यह इसलिए सर्वोत्तम यही गान है। हमारे देश में आजकल 15 अगस्त गया तो बंगाल के दो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। एक है
बंकिमचंद्र
चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ तो उनका था वंदे मातरम। ठीक है
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय।
इसके बाद में एक और बन गया
रविंद्रनाथ
न्याय और कवि दोनों में कोई रद्दी की टोकरी में फेंक मिला उन्होंने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय गान होने को उपयुक्त अरे भागवत का मिक्स करते कृष्ण संबंधी राम संबंधी भी होता भगवान के भाव का सत्य होता कर नहीं सकते हो। एक वंदे मातरम माता का वंदना नहीं किया क्योंकि पिता जी की वंदना नहीं
भारत तो माता देश
बस माता जी रहेंगे पिता जी का कोई स्थान नहीं है। और यदि भगवान की वंदना कुछ होती ना जब माता कल्याण ये सब नास्तिक पंकिम चंद्र जैसे नास्तिक ये हमारे दूसरे
ब्रह्मवादी
पूर्ण नास्तिक भगवान से मुंह का कोई भी संबंध तो राष्ट्र एक धर्म प्रधान देश है ना तो ये सबका जिस गान में कीर्तन में भगवान का कोई महत्व नहीं है वो गान गान भी नहीं है। श्रेय मत है कौन श्रेय दिए होगा ऐसा ये पूछ रहे हैं महापुरुष। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं जाए श्रेय माने होता है साधारण रूप में समझिए एक श्रेय और एक प्रेय। जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में अलग है कि जिसको पाया नहीं और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेय। जैसे हमको पुत्र नहीं है पुत्र मां विवाह नहीं हो रहा पत्नी मां धन नहीं है धन मां स्वर्ग नहीं है स्वर्ग मां मुक्ति नहीं है मुक्ति मां ये सब विक्रे प्रिय ये जीव का स्वरूप नहीं। श्रेय क्या है श्रेय किस होता है आत्यंतिक कल्याण जिसके होने के बाद भी और कोई कल्याण अकल्याण की कोई संभावना नहीं होती इसको कहते हैं श्रेय। प्रेरणा मिलने पर फिर हमारा अकल्याण हो सकता है। पुत्र मिला पुत्र मर गया, पुत्र की पुत्र हो गया, फिर दूसरा प्रेरणा होगा जो इसकी मति सुधार दी या एक और पुत्र स्वर्ग मिल गया, फिर वहां से गिर गए फिर स्वर्ग मुक्ति या तो मिले भी तो देखेंगे कोई सुख नहीं है तो वो मोहित दुख में परिणत हो। इसे ये सब नित्य कल्याण का नियम, भगवत भक्ति ही नित्य कल्याण। यह कैसे मिले भी भक्तों के संग में, इसलिए सबसे कल्याणजनक संसार में यदि साधु संघ मिल गया तो हमारा कल्याण हमारे कर्तव्य में आया, और साधु संघ यदि हो गया गर्व एक आदमी का है अच्छे पढ़े लिखे जो मैंने पूछा कि गुरु किसको कहते हैं, कहते हैं गुरु गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान। उनको ये नहीं जानते हो जो हमारे शास्त्रों में आज तक किसी भी गुरु ने अपने को भगवान नहीं कहा, सब भगवान का दास। प्रभु हमारे सिद्ध है, मैं उनका दास हूं, इस संबंध को जिसने जोड़ दिया वो गुरु ने। कृष्ण के सेवा की आंखें हमारी खोल दी, ज्ञान जन सभा का ज्ञान रूपी अंजन का सभा का लगा करके हमारे आंखें खोल दी और कृष्ण के चरणों में हमें अर्पित कर दिया। जो गुरु स्वयं भगवान कहता है तो एक तरह से नास्तिक, इसलिए गुरु वही है संत वही है जो भगवान के चरणों में हमें उसको भगवान से भी अधिक अधिक आदर करना चाहिए, क्योंकि हम तो भगवान जानते नहीं थे, उन्होंने भगवान के चरणों में हमें पहचान। इसलिए जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा भगवान के प्रति जितना भाव है उतना उनके प्रति भाव है। ऐसा ही कल्याणकारी जो संत है वो वही हमारा जीवन के लिए है। यदि संत मिल गया तो समझे ये संसार हमारा समाप्त होने वाला है, जब संसार समाप्त होने को होता है तो ऐसा साधु संघ मिलता है। भगवत ने लिखा यदि संसार अब समाप्त होने को हुआ तो साधु संघ या साधु संघ मिल गया तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया, अब भगवान को इसलिए भगवान का पाना बड़ा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ संसार, किंतु भगवत भक्तों का मिलना उससे भी अधिक। जब तक संत नहीं मिला तब तक समझे भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, आज यदि संत मिल गया समझो कि और मिल गई ऐसा समझ। काल स्मरण जी करिए अनुष्ठान, जीवों को सब समय क्या स्मरण करना चाहिए, हम लोग स्मरण क्या करते हैं, कोई दुख आ गया तो उसके प्रतिकार के लिए सब समय चिंता करें कैसे दुख आया क्या हुआ, बस दिन रात इसमें हमारी क्या कमी है, क्या क्या कमियां हैं जिसमें सुख नहीं मिल रहा है, बस इसी की चिंता। हमारा विरोधी कौन है, हमारा सुख का विरोधी कौन है, बस यही चिंता आती है और कोई चिंता ही नहीं, भविष्य की चिंता आगे क्या होगा आगे क्या होगा, बस ये सब रोग हो गया उसकी चिंता, कहते कि ये सब मत करो, जबकि इनको दूर करना है तो क्या करो, सब सुने कृष्णाम भूमिलास स्मरण प्रधान स्मरण, भगवान के नाम की महिमा, उनके गुण की महिमा, उनकी लीलाएं, ये सब दिन रात स्मरण करो। समय में मिले संसार की ये भूल पताल रोग अभियोग ये सब स्मरण, बस उसे ये सब कुछ भगवान का नाम स्मरण या अजामिल उन्होंने अपने पूर्व कर्मों को स्मरण नहीं किया, छोड़ दिया। ये वाल्मीकि जी उनका पहला नाम
रत्नाकर
दर्श, जब नारद जी ने उपदेश दिया तो सब कर्मों को सब कुछ भूल गए और भगवान का नाम स्मरण, बस इसी से बिरा था। इसलिए भगवान नाम भूल ले जाता, स्मरण करना ही सबसे प्रधान स्मरण, इसी को स्मरण और बाकी सब स्मरण इसके प्रभाव से सब दूर हो जाए। ध्येय मध्य जीवन कर्तव्य कौन ध्यान, ध्येय मध्य जीवन कर्तव्य कौन ध्यान, जिनके बहुत ही ध्येय हो सकते हैं। ध्येय माने
ध्यान योग,
ध्यान योग, ध्यान माने क्या है, ध्यान
ध्यान ध्येय वस्तु को बार बार चिंतन करना ही ध्यान,
भी माने क्या होता है
बुद्धि,
भी माने बुद्धि, बुद्धि जिसको विचार करती है, जिसमें बुद्धि संपूर्ण रूप से लग जाए, यहाँ पर भी माने मन भी होगा, मन बुद्धि इत्यादि एकदम संपूर्ण रूप से लग गया और दूसरे वस्तु का चिंतन न कर उसको कर देंगे संत प्रारंभिक तो बुद्धि को तो किस चीज में लगाना चाहिए, राधा कृष्ण पदम मुझे ध्यान, राधा कृष्ण के चंद हम लोग का ध्यान, यही सबसे बुद्धि हो रहा है। कैसे ध्यान करेंगे, जैसे गुरु जी ने बताया मंत्र के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, कृष्ण की लीलाओं का ध्यान, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान, राधा जी के चरण कमलों का ध्यान, भागवत की टीका में या रूपोस्वामी भक्तोस्वामी चिंतु राधा जी के कृष्ण के राधा जी के चरण कमलों में महाप्रभु जी के चरण कमलों का क्या क्या चिन्ह है, ये सब बदला है उनका चरण कमलों के साथ उन चिन्हों का ध्यान करें, उनके निर्माण का ध्यान करें, उनके लीलाओं का ध्यान करें। सर्व त्यज जीवन कर्तव्य कहां का, जीव का कर्तव्य, जीव जीव कहां पर अधिक वास करे, सर्व त्यज जीवन कर्तव्य कहां का, कहां पर वास करना उचित, महिला बंधु जहां नित्य मिला या तो राधा कृष्ण की का प्रेम विलास जहां पर नित्य होता है, उसी वृंदावन में सब जीवों को रहने की चेष्टा कैसे रहे। ब्रह्म जी एक आदमी कहा कि हम वृंदावन में बात करेंगे, वो वृंदावन में गया खाने की चिंता हुई, कभी खाया है कैसे जब इच्छा नहीं करेंगे, बस चिंता होगी मैं करूंगा इसकी व्यवस्था, रिक्शा चलाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगी कोई दुकान पार कर दिया नहीं पर कपड़े का बिजनेस कर दिया कुछ हो गया कि तुम उठा ले करके तो सब चला गया, बस हो गया वृंदावन वृंदावन में ऐसा नहीं था। वृंदावन में यदि किसी संत का संग मिल जाए और सच में भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करते और भूमि की महिमा बतलाए और दिन रात उसी की चिंता करके रहे तो वृंदावन, अन्यथा पूर्ण रूप में वृंदावन भूमि में रह करके अपराध संचय करके भूलता है, तरह तरह के अभाव तरह तरह की समस्याएं न पड़ता जाएगी और वृंदावन भूमि में रानी नहीं देगी, कुछ दिन रहेंगे और ऐसा उत्पात होगा कि तुमको छोड़ करके चला जाए, वृंदावन आएंगे गंगा चश्मा ले लेंगे, जा रहे हैं चश्मा उतार करके आपको दिखलाते दिखलाते कहेंगे और भी दो पैर वाले भी बंदर मान दो पैर वाले बंदर होते हैं और भी कुछ है जो आपका सर्वस्व ले लेने की चेष्टा करेंगे, इसलिए जल भावे तक वहां पर मत करें वृंदावन जैसे नाम भी जो स्थिर होता पहले तो मत लिखो फूल टूटे लेकर और जाओ तो चिंता न रहो और गोवर्धन चढ़िया
ना
देखा गोपाल और गोवर्धन पर क्या करके गोपाल को मत करो, उनको साधारण पत्थर ज्ञान करेगा, वृंदावन भूमि को साधारण भूमि ज्ञान करेगा, वहां के वासियों को तुम और पेड़ लताओं को स्थूल वृक्ष समझेगा, दर्पण की जरूरत होगी तो ना के नीम पेड़ पत्थर करके डाल तोड़ ले आएगा उसे, वहां के पत्थरों को वृंदावन के उसी पर पैदा करेगा, न जाने क्या क्या करेगा, इसलिए स्थूल बुद्धि से न रह करके वैष्णव के अनुगत में सेवा की भावना से वहां रहा जाए, इसलिए वृंदावन भूमि कैसे रहा जाए, करेंगे कैसे रहा जाए, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अपनी टीका में कह रहे हैं, ऐसे लोग जैसे मैं कह रहा हूं, उठा भी वृंदावन ले गए, उनको कोई ओ छोड़ ओ किनारा नहीं मिला वृंदावन, देखा कि ये गोपियां ही वृंदावन और कृष्ण इस वृंदावन में ही गुरु भी सब सुनिए, कृष्ण को साक्षात रूप में या वृंदावन को उपलब्ध नहीं किया गया, उन्होंने एक गाया श्रीमद भागवत आशा हो चरण रेणु दुषाम श्याम वृंदा बने किमें स्वजन आपके कथन के लिखा भेजे मुकुंद पत्नी और मैं वृंदा करने चाहता हूं, वहां पर कैसा रहना चाहता, गुण औषधि भी होकर औषधि मैंने जल क्या है औषधि गुरु मैंने छोटे छोटे होते हैं अपनी वर्षा के साथ में और फिर अपने सीजन में होकर के ग्रीष्म काल में सूख करके घर पर ही खत्म हो जाते, ये लोग जैसे हैं तो ऐसे झुंड बन जाना या लता बन जाना, इसलिए सब रूप में दीनहीन होकर के गोपियों की चरण भूमि की सेवा कर सकूं, ऐसी किसी को भावना हो तो वृंदावन में लगे, इसलिए कहते हैं आशा हो चरण रेणु जुषाम, मैं वृंदावन में गोपियों की चरण भूमि की सेवा करने के लिए जुषाम मैंने सेवा करने के लिए मैं वृंदावन में रहना चाहता हूं, कैसे किसी भी प्रकार से गुरुम लता औषधि के रूप में जिन्होंने जिन गोपियों ने क्यों कि वहां पर गोपियों ने दुष्कर्म स्वजन आपके पत्नी चरित किया दुष्ट जिसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे स्वजन आर्यवर्त स्वजन मैंने भाई बंधु माता पिता पति स्त्री ये सब आर्यवर्त मैंने पति को भी एक धर्म पूर्व धर्म जाति धर्म विवाह धर्म इत्यादि का इन मर्यादाओं को भी पूर्ण कर देखकर भजन किया था कृष्ण को भी प्रसिद्ध कर दिया, ऐसे गुरुओं की चरण भूमि की सेवा के लिए ही वृंदावन में इस भावना से रहे तो कैसे होगा, सब समय उन्हीं की लीला कथाओं का दान कर सके और ऐसा कोई भक्त मिल जाए जिनके अनुगत में ऐसा तब तक ठीक है पाने पर वृंदावन में बात करते ही अपना समझे हो सकता है, धीरे धीरे कुछ दिन रहने में तो फिर उसकी मर्यादा उसकी महिमा सब उपेक्षा करने लगे, जैसे बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं अब वो गुरु वैष्णव और संतों का समय पा करके भी
जब सदगुरु की हम का संग होने लगता समझते हैं कि ये तो ऐसा वस्तु को इच्छा करना है, इस तरह से चिंता करने की इच्छा करनी है। नाम ऐसा है वृंदावन में अनाधिकारी को नहीं रहने देगा, तो अगर कहता जैसे कहेंगे तुम्हारे बच्चे बीवी मैया आई सब रो रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ तो उसको भी ठीक करने के लिए जाऊं, किसी से मिलने के लिए जाने की इच्छा हो, कुछ रुपयों के लिए कुछ कहीं काम अटका हुआ है उसके लिए चलते हैं, साधु संग परमात्मा वृंदावन भूमि यह सब छोड़ करके फिर आना रहा, फिर धाम आने नहीं देंगे। संपत्ति मध्य तो यही पहले रखना है, वृंदावन की भूमि कहानी के प्रति प्रीति ही वही तो संपत्ति है, तो हम लोग सुनी समझ करके तुच्छ संपत्ति के लिए जाते हैं, कोई धाम ही करा देता है, ये कार्यकार अंदर उधर से उठरता है, पहले तो बड़ी उत्कंठा रहती है, सुनाएंगे वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, वहां पहुंचने पर स्थूल रूप में कुछ देख नहीं पाते, उपलब्धि नहीं हो पाती, नहीं तो वृंदावन के लोग नौकरी करने के लिए बॉम्बे और कलकत्ते में भागेंगे, बड़े बड़े जज बैरिस्टर और कितने धनी मानी सब लोग सब नौकरी छोड़ करके नंगे हो करके वृंदावन में आकर के जो कलकत्ते नौकरी कर गए हैं उन्हीं के घरों में एक छोटी झूठी रोटी मांग करके जीवन निर्वाह करते हैं, तो ब्रजवासी दोनों में कौन हुआ, कौन जैसा जो यहाँ जन्म लेकर के ब्राह्मणपुर में धनीपुर में या बिजनपुर में लेकर उन्हीं के लिए जब बाहर चला गया और बाहर के लोग उस सबको छोड़ करके यहाँ पर आ गए, इसी प्रकार से उन्हीं की रोटी पर जीवन धारण करके मान अपमान सब कुछ सा करके रखे, तो कम ब्रजवासी इसलिए हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे, इसलिए वृंदावन धाम भूमि यहां पर नित्य लीला राष्ट्र नित्य लीला राष्ट्र अभी भी होती है आगे भी होता रहेगा, पहले भी ये लीला भूमि यदि कोई राष्ट्र भेज है मां प्रभु आए कितने दिन रहे करके चले दिख रहा है कि मैं भी अनाधिकार चले गए, उनके संग साथी लोग उनको देखा देते ये बार बार मूर्छित हो जाते हैं, शरीर साबित छूट जाता है, तो इसलिए उनको पकड़ करके फल बांध करके उनको लेकर के चले, किंतु वहां तो सब समय वृंदावन में स्वर्ण मध्य लिए कौन से स्वर्ण, जितने प्रकार के स्वर्ण गुरु शिष्य इत्यादि सुनते हैं गुरु के निकट से स्वर्णों का भी तात्पर्य है, जीव तत्व क्या है माया तत्व क्या है कृष्ण तत्व क्या है ये सब स्वर्णीय है, सुनते 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 सबसे अंतिम स्वर्ण कहते हैं विक्रीतम भरुणी दर्द विष्णु सद्भावितां सुनियात अथ बड़ी भक्ति परां भगवती पति लक्ष्मी कामन फिर लोकमाशु अपी हमें राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं रासलीलाएं क्या है, इनका श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ और अंतिम श्रवण है, सब श्रवण कर लेने के बाद में उनका जीवन देखा इससे बढ़कर क्या होगा, उससे होगा क्या हृदय बनाने वाली कामनाएं हैं जो फिर करो फिर क्रोध मने क्या फिर क्रोध बहुत हो सकता है, प्रधानमंत्री भी तो उन्होंने संसार के भोगने की कामना ये ही है और एक फिर और नहीं है गोपियों का जो विरह है कृष्ण के मिलन के लिए वो भी एक विरोध है, तो गोपियां उसके उपशम के लिए कृष्ण का संग के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोग हृदयों को दूर करने के लिए साधु संग गुरु इत्यादि का संग हम प्रार्थना करते हैं,
इसलिए कृष्ण की ऐसी कथाएं हैं यदि श्रद्धा पूर्वक यदि कोई सुने अनुसुड़िया निरंतर श्रवण करे अनुसुड़िया गुरु के मुख से सुने और निरंतर सुने श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते उसके प्रभाव से भक्ति जितनी ही होगी उतने ही परिमाण में संसारिक कामना वासना सब दूर होता जाए। पहले अपने हृदय को निर्मल करके और तब भगवान की कथाओं को सुनेंगे क्या ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ ही जन्म लग जाएगा। मन को ही हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए कामनाएं वासनाएं काम रोग बहुत मोह ये सब दूर करने के लिए भगवान की सब लीला कथाओं का श्रवण करना है। केवल लीला कथाओं का श्रवण करने से ही ज्ञानी प्रयास में विभाजित कर जीवन के समय स्वतान प्रसन्न मनोवृत्य समझी लो भगवंत हित कर्म रसायना तथा तद्व समाप्त आशीर्वाद बात व्रत हुई श्रद्धा व्रति भक्ति अनुकर्षा भगवान की लीला कथाओं के श्रवण से ही यहाँ पर लीला कथाओं का हो रहा है उसी के द्वारा ही पहले संबंध ज्ञान होगा धीरे धीरे भगवत की क्रिया आएगी दूर भी हो जाएगा धीरे धीरे अनर्थ दूर होकर के निष्ठा रुचि आसक्ति बस खड़ी के भवन का श्रवन करते सेवन करें सेवन करना चाहिए सेवन यानी प्रतिग्रास सेवन करने से जैसे पुष्टि पुष्टि और खुदानुवृत्ति खुदानुवृत्ति होगी पुष्टि भी होगी तुष्टि भी होगी ऐसे हर कथाओं के श्रवण से संसार की निवृत्ति भगवत तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन क्रमश एक स्तर में सकते क्या है भक्ति परेशान भयो भक्ति अन्यत्र पुष्टि पुष्टि बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं
भक्ति परेशान
भगवान की भक्ति करने से पहले भक्ति भक्ति होगी परेशान भव पर जो परेशान उनकी अनुभूति होगी और इतर विषय में वैराग्य होगा जितने परिमाण में भक्ति होगी अर्थात उपासना होगा भक्ति का अनुशीलन करें उतने ही परिमाण में भगवत अनुभूति चली होती चली जाएगी। भगवत अनुभूति नहीं हो रही है भजन कर रहे हैं और अनर्थ भी दूर नहीं हो रही है वैराग्य भी नहीं होती हो रहा विरक्ति नहीं होती है तब तक उस पल यदि तीनों एक साथ में होगा तब तक होगा सुख पुष्टि पुष्टि कृपा एक ही साथ में खाएंगे पेट भरता जाएगा पुष्टि भी शरीर की होती जाएगी ऐसे हाँ यथा करुण निशीचने त्रिपंति तत्स्कंद भूयो होता था प्राण उपहास जथेन्द्रिया तथा तो सर्वाभरण इस श्लोक को सभी लोग याद करते हैं भारत में इंपॉर्टेंट विषय यथा करोड़ मूल से चलेगा सब वैष्णव को वैष्णव मात्र को याद रखना चाहिए यथा करोड़ मूल से चले जैसे पेड़ का मूल सिंचने से उसका घर भी मोटा होगा पत्ते भी हरे भरे रहेंगे पुष्ट हो जाएगा फल फूल भी उसमें लगे जाएंगे छाया भी हो गया विराट प्रत्येक पत्ती में पानी देने की जरूरत नहीं प्रत्येक डाली पत्ता और फल और फूल में मंजरी में पानी देने की आवश्यकता नहीं मूल में दो मूल में भी देंगे मूल में ना दें जड़ में न देंगे पत्तियों में पुष्पों में डालियों में फलों में फूलों में हम पानी देंगे तो क्या होगा फिर सूख जाएगा और पत्ते पत्ते सब सड़ पड़ जाएंगे जैसे अच्छा ठीक है पेड़ के जड़ में भी देंगे और पत्तों को भी धो देंगे ये सब पहले तभी गड़बड़ हो जाएगा अगर कैसे इसलिए दूसरा उदाहरण देंगे
प्राणों को हरा दिया,
क्योंकि पेड़ में वो सब चीजों का उदान ठीक से नहीं आया। पेड़ में पत्तों को भी धो सकते हैं और पेड़ की जड़ भी देने कोई हल नहीं है, किंतु दूसरा जो उदाहरण दिया जैसे मुख में आहार देते हैं तो पेट हाथ पैर दिमाग सब कुछ पुष्टि हो जाए, शक्ति उसमें हो जाए। यदि कहो जैसे पेड़ में पानी दिया जड़ में पत्तों को भी खोया, तो वैसे ही हम मुख में आहार देते हैं, आंख में यहां भी आहार दे देंगे, नाक भी दे देंगे, और हाथ को काट करके उसमें भी पेट को काट करके उसमें दे, ये तरीका ठीक है। यहां पर सुख से अपने आप ले, इसलिए वैसे पत्तियों में मत करो, अतः देवता देवी और ये दूसरे हैं काष्ठों का मतदान करो, जड़ कृष्ण है वहीं पर देने से सफल, और सब देवताओं में तुम्हें इनको भी दोगे तो ये सफल। इसलिए ऐसा नहीं, एक कृष्ण की उपासना से ही सबकी उपासना हो जाएगी, ऐसा दृढ़ विश्वास करके उनकी उपासना। उपास्य मध्य कौन उपास्य करना, श्रेष्ठ उपास्य जिनको लगाता है कृष्ण नाम। कल में जितनी प्रकार की उपासनाएं हैं उन सब में नौ प्रकार की उपासना श्रेष्ठ है। नौ प्रकार की उपासना में से समर कीर्तन स्मरण ये तीन प्रधान, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराध है नाम ले गए, निरपराध हो करके यदि कृष्ण नाम किया जाए तो वही सर्व। इसलिए कलयुग में नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए राधा कृष्ण जो नाम है, राधा जी का नाम किस लिए लेंगे, इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण इसलिए करेंगे, इसलिए युगल नाम
कृष्ण नाम गाने वाले राधी का चरण पर राधा नाम गाने कृष्ण चरण,
यह दोनों को करना, दोनों को कृष्ण युगल। तो हम लोग तो हरे कृष्ण करते हैं, इसमें तो सब हरि का नाम नहीं, ये जुगल नाम हरे राधिके कृष्ण और हरे राधिके राम राधा, इसलिए ये जुगल नाम। इस जुगल नाम से श्रेष्ठ और कोई नाम नाम यदि करते हैं तो बिना उनके रूप का ध्यान किए हुए भी यदि करेंगे तो वो आ जाएगा, वो कृष्ण स्वयं राधा जी दोनों आ जाए। और जितने उपाय हैं उसमें एक कृष्ण नाम ही जो है वो मूल चीज है, अंगी है और बाकी सब अंग अंग। इसलिए स्मरण भी यदि होगा तो कीर्तन प्रभावी स्मरण सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृत में यद्यपि राजा अंगाभक्ति में स्मरण प्रधान है किंतु इधर में बतलाया गया है यद्यपि अन्य भक्ति पलौ कर्तव्या तथा उतना भक्ति संयोग एवं कर्तव्य। यदि और स्मरण भी करते हो तो कीर्तन को साथ में लेकर के क्यों अंगी है, इसलिए कलयुग में यदि स्मरण भी होगा तो नाम कीर्तन के प्रभाव से स्मरण।
ठाकुर जी का स्मरण प्रधान निकला गया किंतु कीर्तन का ही प्रधान निकला गया,
इसलिए राजपथ में चंद्र का यह इसलिए निकला कर नाम भी प्रधान है, इसलिए राधा कृष्ण का जुगल नाम ही हम लोगों का प्रधान उपास्य है। भुक्ति तथा ये बात जरूर है, साधु संघ जितना निर्मल आपको प्राप्त होगा रसिक वैष्णवों का संघ उसके अनुवर्त में नाम है तो वह नाम ऊपर तक लेगा, नहीं तो कभी भुक्ति और कभी मुक्ति दे सकते निरस्त होकर के जाए। संघ का बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा तन नाम रूप फलितादि सुकृतना अनुक्रमेण रसना मनुष्य तिष्ठन भजे सदानुरागी जनानुगामी कालम गए अखिलामितुपदेश यही सबसे उपदेश वृंदावन में रह करके उन्नत रसिक और अपने से उन्नत वैष्णव रसिक और तत्पद्य वैष्णव के संग में रह करके निरंतर राधा कृष्ण के इससे बढ़कर सबका सार यही है।